हमें हमारे दूसरे मोजस मेहमान के तशरीफ लाने से पहले और उनकी स्पीच से पहले अपने वक्त के बारे में संजीदा रवैया अख्तियार करना, जो वक्त हमें इस दुनिया में दिया गया है, बतौर एक मुतदय्यन इंसान और बतौर एक आकिल इंसान, अकलमंद इंसान, वो कौन सी चीजें हैं कि जिनकी तरफ अगर एक इंसान मुतवज्जे रहे तो एक ऐसी जिंदगी गुजार सकता है कि जिसे एक कामयाब सक्सेसफुल जिंदगी कहा जाए, और जिंदगी में किसी भी मौके पर जब वो पीछे मुड़कर अपनी गुज़श्ता जिंदगी, गुज़श्ता अय्याम को देखे तो उसमें पछताने की चीजें कम से कम हो या ना हो। तो ऐसी जिंदगी वो शख्स हरगिज नहीं गुजार सकता कि जिसने अपनी जिंदगी के बारे में कोई प्लान नहीं बनाया, अपनी जिंदगी के बारे में किसी मकसद का, बड़े मकसद का, और फिर उस तक पहुंचने के लिए छोटे मकासद अहदाफ का तयन नहीं किया, प्लान नहीं किया। ये जो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं उससे पहले एक नुक्ते की तरफ आपकी मैं तवज्जो जरूर करवाना चाहूंगा, और वो ये है कि हम मुसलमानों से उन रहनुमाइयों के बारे में जो हमारे दीन ने की हैं, एक तरह की गलत निगाह पैदा हो गई है, और उस निगाह ने, उस इन चीजों को देखने के उस एंगल ने हमें इन चीजों से, इस्तफादे से बड़ी हद तक महरूम कर दिया। और वो ये है कि हम आयात कुरान हो या फरामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो, उनको एक खास तकद्दस की निगाह से देखते, और इतना तकद्दस की निगाह से देखते हैं कि प्रैक्टिकली उन पर अमल करने की तरफ तवज्जो हमारी कम होती है, और उनको पढ़ने और सुनने से तकद्दस और अजर और सवाब की तरफ तवज्जो हमारी ज्यादा होती है। और इसका नतीजा ये निकला है कि अपनी अमली जिंदगी कैसे हम कामयाब गुजारें, इसके लिए इनको छोड़कर अक्सर औकात हम दूसरों की तरफ देखते हैं, और जिनको हमने आज के जमाने में खास्ता या ना खास्ता अपना आइडियल करार दे दिया। तो ये जो चीजें आपके सामने बयान करूंगा आप तवज्जो फरमाएंगे, ये सिफात जो बयान होंगी, ये पॉइंट्स जो बयान होंगे, ये नुकात जो बयान होंगे, ये चाहे किसी मुतदय्यन इंसान में हो, दीनदार इंसान में हो, या किसी ऐसे इंसान में हो जो किसी दीन को नहीं मानता, किसी आसमानी दीन को नहीं मानता, फर्क नहीं है, वो एक कामयाब इंसान हो, कम से कम अपनी दुनियावी जिंदगी के एतबार से एक कामयाब इंसान हो। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो चाहे दीनदार कहता है खुद को और चाहे दीनदार खुद को नहीं कहता, एक नाकाम जिंदगी गुजारेगा। और वही बात जो मैंने अर्ज की कि आखिर में जाकर जब अपनी जिंदगी की तरफ पलट कर देखेगा तो ज्यादातर चीजें उसको पछताने की तरफ ले जाएगी कि ये जिंदगी कैसी गुजारी। सबसे पहले चंद कुरान मजीद की आयात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वक्त चूंकि कम है तवज्जो फरमाए। ये कुरान मजीद की मुख्तसर सूरा जिसको हम अक्सर अपनी नमाजों में भी तिलावत करते हैं, इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंतहाई اہم حقیقت انسانی زندگی کی بیان کرنے کے لیے وقت کو اپنے گواہ کے طور پر استعمال کیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. عصر کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو. اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ زمانے کی قسم، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ گواہی دے رہا ہے، وقت گواہی دے رہا ہے اس بات پر. یعنی اگر تم مڑ کر تاریخ انسانیت کو دیکھو، پوری انسانیت جو اول سے لے کر ابھی تک آئی ہے، جو تم تک پہنچی ہے تاریخ اس کی، اگر اس کو تم سٹڈی کرو، مشاہدہ کرو، تو یہ پورا زمانہ تمہیں اس بات پر گواہی دے گا کہ سوائے کچھ صفات رکھنے والے لوگوں کے، باقی سب نے جو نعمتیں، جو سرمایہ، جو کیپٹل زندگی کی شکل میں انہیں ملا تھا، اس کو ضائع کر دیا. جو وقت انہیں ملا تھا اس کو ضائع کر دیا. والعصر، زمانہ یعنی وقت، یہ گواہ ہے اس بات پر، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً بغیر کسی شک و تردید کے انسان خسر، یعنی ایسا نقصان جس میں کچھ بھی نہیں بچتا. آپ توجہ کیجئے، سارا فوکس وقت پر. ایک وقت ہے جو مجھے اور آپ کو ملا اس دنیا میں، اور اس نے ختم کب ہونا ہمیں بتایا نہیں گیا، اور یہی وقت ہی ہے جس کو ہم اپنی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی عمر کہتے ہیں. اور جب یہ ختم ہو جائے گا، یعنی جو سرمایہ ہمیں دیا گیا تھا انویسٹ کرنے کے لیے، سرمایہ گزاری کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے اس وقت کو کن کاموں میں صرف کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا رزلٹ لیں گے، وہ ضائع ہوگا. خسر یعنی کچھ بھی نہیں بچا، سوائے ایسے لوگوں کے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب میں اس کا ترجمہ ایک اور طرح سے کر رہا ہوں، اس کے حقیقی مفہوم پر بیس ترجمہ کر رہا ہوں. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہ باتیں جو حقائق پر مبنی تھی ان پر اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا، انہیں تسلیم کیا. ایمان یعنی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لینا اور اس کے مطابق آگے بڑھنا، سوائے ان لوگ، وہ نقصان میں نہیں ہے جن کے سامنے جب حقائق رکھے گئے انہوں نے تسلیم کی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان حقائق کی روشنی میں اپنی عملی زندگی گزاری. خوابوں کی دنیا میں نہیں رہے، آرزوؤں کی دنیا میں نہیں رہے، خواہشات کی دنیا میں نہیں رہے، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا. البتہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ انسان دین اسلام، کہ جو دین فطرت ہے، لذات اور انسان کی تفریح اور انجوائمنٹ کی طرف تاکید نہیں کرتا، بھی آگے آ جائے گا. وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اس کائنات کے حقائق کے پیچھے گئے، ان کو ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر ان کو دل سے تسلیم کیا اور اپنی عملی زندگی کو ان حقائق کے مطابق پلان کیا، وعملوا الصالحات، اور پھر جب اس راستے پر چلنے لگے تو دیکھا کہ اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، تو پھر وہ ایک ٹیم کی شکل بن گئے، ایک خاندان کی شکل بن گئے، ایک جماعت کی شکل بن گئے. وتواصوا بالحق، اور ان مشکلات کو، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور جو مشکلات آ رہی تھی ان مشکلات کو گزارنے کے لیے، ان آزمائشوں کو گزارنے کے لیے، میدان چھوڑنے کی جگہ ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی طرف دعوت دیتے رہے. یہ خلاصہ. ان صفات والوں کے علاوہ باقی جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں حقائق سے منہ موڑ کر، جو اس کائنات کے آفاقی حقائق ہیں، بنیادی حقائق ہیں، اس حقیقت سے منہ موڑ کر آرزوؤں میں، خواہشات میں زندگیاں گزار دیں. دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں، یعنی یہ تو پوری سورت تھی، دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سب نے یہ آیت بار بار تلاوت کی ہوگی، لیکن اس تناظر میں آپ نے شاید اس کو نہ دیکھا ہو. سورۃ المدثر آیت نمبر 45 ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جن آیات کے درمیان یہ آیت کریمہ آئی ہے، ان آیات میں خداوند عالم قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کر رہے ہیں. ہم شاید اپنے ٹائم ضائع کرنے کو اس نگاہ سے نہ دیکھتے ہو، اتنی سنجیدہ نگاہ سے، اتنے خطرناک نتائج ٹائم ضائع کرنے کے، جس نگاہ سے قرآن نے اسے پیش کیا ہے. اس لیے کہ ٹائم ہی ہمارا، میں نے عرض کیا کہ سرمایہ ہے اس دنیا میں. جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کے بارے میں جنتی لوگ سوال کریں گے، اور گویا اللہ ان کی ڈائریکٹ گفتگو کروا دے گا جہنمیوں سے. وہ ان سے پوچھیں گے، تم جہنم میں کیوں آئے، کیا چیز تمہیں لے کے آئی؟ تو پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جواب یہ دیں گے کہ ہم اپنے معاشرے کے محروم طبقے کا خیال نہیں رکھتے تھے. اور تیسرا جواب ان کا یہ ہے، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 45، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فضول گفتگو میں ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں، بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، بیٹھ جانا، آدھی آدھی رات تک بیٹھے رہنا، پوری پوری رات تک بیٹھے رہنا، ایسی محفلیں، کوئی موضوع آ گیا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈسکس کرتے جب فارغ ہوئے تو کوئی مفید چیز اپنے لیے رکھی نہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے بہت وقت ضائع کیا فضولیات. یہ قرآن کریم جہنم میں جانے کا ریزن بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں وقت کیا چیز ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان کو زندگی دی تھی، ان کو فضولیات میں انہوں نے گزار دی اپنی زندگی. بس فضول موضوعات کے اندر پڑے رہنا جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں یہ بہت بڑا ریزن ہے انسان کے برے انجام. اسی طرح ایک اور آیت بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد کچھ احادیث کہ انسان اپنے اوقات کو کیسے تقسیم کرے. سورۃ الزمر آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قبل اس کے کہ تمہاری مہلت تمام ہو جائے، اوپر کی آیات میں قبل اس کے کہ اللہ نے جو تمہیں مہلت دی ہے، جو ٹائم دیا وہ ختم ہو جائے، اپنی اصلاح کر لو. قبل اس کے کہ ان تقول نفس، کہ تم میں سے کسی شخص کو کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ یہ کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے حسرت جو میں نے اپنے پروردگار کے حضور میں اس کے سامنے تفریط کی، یعنی سستیاں کی اور وقت کو ضائع کر دیا، اپنی عمر کو ضائع کر دیا، میں کیا کچھ کر سکتا تھا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں یقیناً ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے زندگی کو مذاق سمجھا ہوا تھا، ہر کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، اور آج اس پچھتاوے کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا. کہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ انسان اپنی عمر کے سرمایہ کو، آپ کیا کرتے ہیں جب آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہو، اگر آپ کے پاس کچھ سرمایہ ہو، کچھ پیسہ ہو، آپ مشورہ کرتے ہیں، آپ آپشنز دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے اس سرمایہ کو کہیں نہیں پھینک دیتے، ضائع ہو جائے گا. ہر سرمایہ سے قیمتی سرمایہ عمر کا سرمایہ، وقت کا سرمایہ. اور احادیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا قیمتی سمجھتے ہیں، आप अपने से मरबूत चीजों को भी उतना ही कीमती समझें। अगर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी का कोई प्लान नहीं बनाया, कोई मकसद नहीं रखा हुआ, यदि आपने खुद को कीमती नहीं समझा, आपने खुद को हकीर समझा है, आपने खुद को बहुत सस्ता समझा हुआ, आपने अपनी कदर नहीं की, तो अपने से मरबूत चीजों की भी, जिनमें से अहम तरीन आपका वक्त है, आपने उसकी कदर नहीं की। आप सुबह उठते हैं, आपके पास दिन का प्लान नहीं होता। जिस जिस तरह आप खुद को कीमती समझना शुरू होंगे, आपकी अपनी नजरों में अपनी कीमत, अपनी कदर बढ़ती जाएगी, तो जितनी चीजें आपसे मरबूत हैं उनकी कीमत आपकी नजरों में बढ़ती जाएगी, और आप उन्हें हर जगह पर सर्फ नहीं करेंगे, जाया नहीं करेंगे। और अगर आपकी अपने आप को कीमती नहीं समझते, अगर आपकी फिक्र छोटी है, तो उम्र गुजर जाएगी छोटी छोटी चीजों के उसूल में, छोटी छोटी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हुए आप उम्र गुजार देंगे। अगर फिक्र छोटी हो, अपने आप को इंसान बड़ा देखता ही ना हो, तो उसका नतीजा क्या होता है? मैं एक छोटा सा आपको जोक सुना दूं। एक मछेरे ने जाल फेंका मछलियां पकड़ने के लिए, और अंदर से एक बोतल निकली मछलियों के साथ। उसने बाहर आके किनारे पर आकर बोतल खोली, अंदर से जिन निकल आया। तो पहले तो जिन को देख के वो डरा, लेकिन जिन ने उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मैं बड़े अरसे से इस बोतल में कैद था, तूने मुझे बाहर निकाल दिया, तो तू कोई सी तीन ख्वाहिशात, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, कोई सी तीन ख्वाहिशात अपनी बता, मैं तेरी पूरी कर दूंगा। तो जब उसकी सांस चलना शुरू हुई, जान में जान आई मछेरे की, उसने कहा कि कोई सी भी तीन ख्वाहिशें पूरी कर दो। इंसान की सोच जहां पे होती है उसका नतीजा क्या होता है? उसने कहा कोई सी भी तीन ख्वाहिश। उसने कहा फिर ऐसा कर कि जिस शहर में मैं रहता हूं, इसमें वो इलाका जहां पे अमीर लोग रहते हैं, वहां पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा महल बना दे, पैलेस बना दे, ऐसा कि किसी का भी। जिनने कहा कोई मसला नहीं, चला गया। थोड़ी देर बाद आया और कहा कि आओ महल देख। महल देखो, उसकी आंखें खोल गई, पूरे शहर में सबसे आलीशान महल था, लेकिन फिक्र छोटी है। जिनने कहा अगर दूसरी बताओ, उसने कहा दूसरी ख्वाहिश है कि शहर की सबसे ज्यादा जो अमीर फैमिली है उनको इसमें लाके सेटल कर इस महल। तो जिन ने शहर की जो सबसे बड़ी अमीर फैमिली थी उनको लाके उस महल में सेटल कर दिया। और फिर जिन ने उसे कहा कि अब एक ख्वाहिश तेरी रह गई है। उसने कहा मैं कोई बच्चा हूं, बचपन से मैंने प्लान किया हुआ था, अगर मेरा कभी बस चल गया तो मैंने कौन सा हदफ अचीव करना, कहां पे जाना। तो जिन ने कहा अच्छा बताओ, कहते हैं इस महल में मुझे चौकीदार की नौकरी दिलवा, इस महल में मुझे चौकीदार की नौकरी दिलवा, क्योंकि वो अपने आप को इससे आगे समझता ही नहीं। तो बहुत सारे इंसान छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे मामलात में उलझ कर, छोटी छोटी ख्वाहिशात में उलझ कर चौकीदार लगे रह जाते हैं, जबकि वो कहीं आगे अपनी जिंदगी में पहुंच सकते थे। बहरहाल कुछ अहादीस हैं कि जितनी मैं आपकी खिदमत में बयान कर पाया, कि इंसान अल्लाह के नबी ने, अहले बैत अतहार ने हमारी रहनुमाई क्या की है, कि हमारे जो 24 घंटे हैं उनको हमें किस तरह तकसीम करना चाहिए। जाहिर है कि तकसीम जरूरी नहीं है कि बराबर तकसीम हो, हर इंसान अपनी जिंदगी के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, लेकिन इन चीजों के लिए वक्त जरूर हो, हर रोज 24 आवर्स में, 24 घंटे में उसको। अल्फाज पर गौर कीजिए। पहली हदीस अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और स्टार्ट कैसे करें, खिताब हजरत अबू जर से है। ए अबू जर, वो शख्स कि जो आकिल है। क्या फरमा रहे हैं? वो शख्स के जो आकिल है, यानी अल्लाह ने अकल दी है और उस अकल को इस्तेमाल भी करता है, उस अकल को अपनी ख्वाहिशात के नीचे दबाया नहीं हो सकता। वो शख्स के जो आकिल है और उसकी अकल मगलूब भी नहीं है, उसकी अकल पर उसकी ख्वाहिशात गालिब नहीं है, क्योंकि ख्वाहिशात में इंसान फिर टाइम अपना जाया कर देता है। उसको चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि अपने औकात को चार हिस्सों में तकसीम करे। अब आप देखिए कि ये चीजें जिनका नाम लिया जा रहा है, ये हमारे 24 घंटों में मौजूद है या नहीं, और अगर नहीं मौजूद तो फिर इसको सुनने का तब फायदा है कि ये चार चीजें आ जाए, अगर नहीं और पूरे एहतमाम के साथ, पूरी इंपॉर्टेंस के साथ हमारी जिंदगियों में आ जाए। सबसे पहली चीज फरमाया कि सबसे पहला एक उसके औकात का हिस्सा अपने खालिक के साथ, अपने अल्लाह के साथ मुनाजात, राजो न्याज, इबादत के लिए होना चाहिए। ये राबता और ये लिंक इंसान को बहुत ताकतवर कर देता है, अगर जिंदा राबता हो, बेरूह राबता ना हो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब इब्तिदा हुई वही के नुजूल की रसूलुल्लाह पर, तो अल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब ए रसूल, हम एक बहुत भारी बोझ, जिम्मेदारी आप पर डालने वाले, और उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने के लिए आपको मजीद तैयारी की जरूरत है। अपनी कैफियत को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, और उसका तरीका यह है कि आप रात के लम्हात में अल्लाह के साथ अपना राबता ज्यादा करें, यानी अल्लाह के साथ राबता इंसान को स्ट्रेंथ देता है, इंसान को ताकत देता है, इंसान की हिम्मत को बढ़ा देता है, क्योंकि वो फिर अल्लाह को अपने पुश्त पनाह के तौर पर देखता है। एक वो हिस्सा कि जिसमें वो अपने अल्लाह के साथ मुनाजात करता है, मुनाजात कहते हैं आहिस्ता आवाज में या सरगोशी में बात करना या दुआ मांगना। दूसरा, एक वक्त 24 घंटे में अपने लिए ऐसा रखें जिसमें अपना मुहासबा करें, अपना मुहासबा करें, जैसे एक अच्छा ताजिर जब अपना बिजनेस रात को क्लोज करता है तो चेक करता है कि आज क्या बेचा है, क्या अप डाउन्स आज हुए, क्या मुश्किलात पेश आई है, क्या बेहतरी आई है। और अगर एक और हदीस के अल्फाज में आपसे कहूं तो इमाम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु फी कुल यौम, वो हम में से नहीं है, यानी वो हमारा नहीं है, हमारा फॉलोअर नहीं है, हमारी टीम में शामिल नहीं है, हमारी जमात में शामिल नहीं है, जो हर रोज अपना मुहासबा नहीं करता। ये बेहतरीन आदत है, अल्लाह किसी को तौफीक दे देते। पूरे 24 घंटों में जो टाइम आपको मुनासिब लगता है अपने मुहासबे के लिए, सोने से पहले मसलन, आज सारा दिन कैसे गुजारा, कोई काम था आपको करते हुए बड़ा मजा आया लेकिन अब उस काम से क्या बचा है आपके लिए, आया उस पर पैसा जाया कर दिया, उस वक्त बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब कुछ नहीं बचा, अब दिल कर रहा है कि काश ना किया होता। और सबसे बेहतरीन मुहासबा वो है जो अपने अल्लाह को जहन में रख के किया जाता है कि कौन सा काम है जिससे अल्लाह राजी हुआ है और कौन सा काम है जिससे अल्लाह नाराज हो। بس ایک مناجات کا ٹائم، دوسرا اپنے محاسبے کا ٹائم. ہر روز کا بھی محاسبہ کریں، ہر ہفتے کا محاسبہ کریں ویکینڈ پر، مہینے کے اینڈ پر مہینے کا محاسبہ کریں، سال کے اینڈ پر سال کا محاسبہ کریں، اور کچھ عرصے کے بعد اپنی عمر کا محاسبہ کریں. ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو آپ کی گزشتہ عمر ہے جلدی گزری ہے یا دیر میں گزری ہے، تو اکثر کیا جواب ہوگا؟ بلکہ سب کا جواب ہوگا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ زندگی تمام ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. تیسرا، تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس میں غور و فکر. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کے بارے میں فکر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کی جتنی ترقی ہے، آج سے 1000 سال پہلے انسانوں کی زندگی کیسی تھی اور آج ہم کیا چیزیں لے کر بیٹھے اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ سارا اصل میں اللہ کی مخلوقات میں فکر کا نتیجہ ہے. لوگوں نے چیزیں دیکھی اور دیکھ کے گزرے نہیں، بلکہ دیکھا اور پھر غور کیا، اور جب غور کیا تو ان کو کئی اور چیزیں پتہ چلی جو عام نگاہ والے کو سمجھ نہیں آتی. کہ پوری کی پوری سائنس اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ان کے اندر تفکر اور غور و فکر کا نام ہے. اور ہم کہا بھی کرتے ہیں کہ بعض چیزوں کو مسلمانوں نے بڑا مس کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں ہم جو فقہی مسائل کی کتاب جو معروف ہے جو پڑھتے ہیں، ہم سب کے پاس موجود ہے، جسے ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، توضیح المسائل سے مربوط آیات جو قرآن میں ہیں وہ تقریباً 500 ہیں، لیکن وہ آیات جو سائنس کی طرف جانے کی ہمیں دعوت دیتی ہے، اس کائنات میں فکر کی دعوت دیتی ہے، اس کے رازوں کو کشف کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور یہاں تک اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. وہ 700 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن دیکھیں 500 آیات کو ہم کتنا دین سمجھتے ہیں، لیکن ان 700 آیات کے بارے میں مسلمانوں سے دوسرے لوگ آگے چلے گئے. تو ایک وقت انسان اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے معین کر، ہر انسان، اور قرآن ان آیات سے بھرا پڑا ہے جس میں اللہ اپنے خاص بندوں کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ یہ غور کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں کثرت سے، اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور چوتھا، اس حدیث میں جو لاسٹ ہے وہ یہ کہ ایک وقت وہ رکھے کہ جس میں وہ رزق کے حلال کے لیے کوشش کرے اور محنت کرے. یہ چار چیزیں ہوگی. اگلی حدیث، اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین ہیں اور روایت کر رہے ہیں رسول اللہ سے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اس دوسری حدیث میں کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھی، اور کچھ فرق بھی ہے، یعنی ایک اور یا دو چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ان پچھلی چیزوں میں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنے شب و روز کو، یعنی ایک مکمل دن کو، 4 حصوں میں تقسیم کرے. ایک حصہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز، دوسرا حصہ اپنے نفس کا محاسبہ، تیسرا حصہ इल्म सीखने के लिए एक ऐसी महफिल हो आपकी जिंदगी में। कोशिश करें कि अगर अलग से नहीं बना सकते तो जो महफिलें ऑलरेडी आप अटेंड करते हैं, जो आपकी रूटीन में है, उन महफिलों को इस महफिल में कन्वर्ट कीजिए। उन्हें अगर यूजफुल नहीं है, फजूलियात में खुदा ना खास्ता गुजर जाती है, ऐसे ही बैठते मिलकर जो टॉपिक शुरू हो गया उसी को ले लिया, कई घंटे गुजार दिए उसी में, या एक से दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक और टाइम जाया कर देते हैं, उसको यूजफुल बनाइए। एक हिस्सा वक्त का इल्म सीखने के लिए और आलिमों के पास बैठने के लिए, आलिमों की महफिल में बैठने के लिए। और अगर आपके लिए हर रोज पॉसिबल ना हो तो अब आपके लिए आसान हो गया, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उसके जरिए भी ये इस्तफादा किया जा सकता है कि किसी मसलन आलिम की गुफ्तगू सुनी, थोड़े वक्त के लिए सुनी, लेकिन ये हिस्सा आपकी जिंदगी में, आपके 24 घंटे में शामिल हो। जैसे इंसान के बदन को ग़िज़ा की जरूरत है और हम कितना उसकी फिक्र में होते हैं, इसी तरह इंसान की रूह को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए उसको भी ग़िज़ा की जरूरत है, और रूह की ग़िज़ा इल्म है, तो उस ग़िज़ा की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि आलिमों की महफिल में बैठने के लिए वक्त रखें और उनकी मुखलिसाना नसीहतें सुनने के लिए। चौथा, एक हिस्सा हलाल लज्जतों और ऐसे कामों को कि जो काबिले तारीफ हो, काबिले मुजम्मत ना हो, वो काम करने के लिए, अपनी हलाल लज्जतों के लिए एक टाइम रखें। और ये जरूर रखें, अगली हदीस में इसकी वजाहत हो जाएगी कि ये जो इंसान की तफरीह का वक्त है जिसमें इंसान कोई ऐसे काम करता है जिससे उसको मजा आता है, एंजॉय करता है, अलबत्त उसकी शर्त रखी गई कि ऐसे काम ना हो जो काबिल मजम्मत है। बाज लोग टाइम पास करते हैं दूसरों का मजाक उड़ाकर, बाज लोग टाइम पास करते हैं और कोई अल्लाह की नाफरमानी करके, कोई गैर अखलाकी काम करके, वो मुराद नहीं है, हलाल लज्जात। तो अगली हदीस की तरफ मैं जाता हूं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज कर कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं और एक आधी चीज, दो चीजें बीच में ऐड हो जाती हैं। ये हदीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, और इसमें फरमा रहे हैं कि तुम्हारे वक्त के तीन हिस्से होने चाहिए। अब ये कभी चार और कभी तीन, ये इख्तलाफ क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, जिनमें से मसलन एक वजह यह है कि जिसको, जिस फर्द को या जिस ग्रुप को बता रहे थे उनके लिए इसी तरह बताना ही मुफीद था, उनको देखते हुए, उनके हाल को सामने रखते हुए इस तरह कहना मुफीद था। या बाज औकात ये होता है कि वो जो रावी है, चूंकि ये हदीसें जो हम तक पहुंची हैं, बाज औकात चार पांच छह सात अफराद बीच में आए और किसी से मसलन थोड़ी बताने में ऊपर नीचे भी एक आधी चीज रह भी सकती है, तो ये इख्तलाफात इस वजह से होते हैं। लेकिन जब एक ही मौजू पर हम सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं तो एक मुकम्मल शक्ल हमारे सामने आ जाती है कि ये काम हमें अपने 24 घंटे के अंदर करने चाहिए। तो इस हदीस के लफ्ज ये है कि एक मोमिन को अपने वक्त को तीन हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, एक अल्लाह से मुनाजात और दुआ और इबादत के लिए, एक कस्ब मुआश के लिए यानी अपना रिज्क तलाश करने के लिए, और तीसरा एक वक्त तफरीह के लिए और हलाल लज्जतों से इस्तफादे के लिए। एक आकिल इंसान अपने एक दिन में इन तीन चीजों को जरूर रखता है, यानी जो नहीं रखता वो आकिल नहीं, इबादत, कस्ब मुआश और तफरी। आप देखिए कि खुद दीन ताकीद फरमा रहे, और अगली जो हदीस है उसमें इस तफरीक को एक और तरीके से उसकी अहमियत को बयान किया गया। यह हदीस इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, कोशिश करो कि तुम्हारे औकात चार हिस्सों में तकसीम हो। एक अल्लाह से मुनाजात के लिए, ये इतनी दफा रिपीट हो रहा है कि इंशाल्लाह आप में से किसी को भूलेगा। कुछ लोग तो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं इंशाल्लाह उनको भूलेगा नहीं। एक हिस्सा अल्लाह के साथ मुनाजात के लिए। देखिए ये मुनाजात का लफ्ज क्यों आया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुनाजात कहते हैं राज और न्याज को। ये एक खास अल्लाह के साथ रिलेशनशिप की तो एक है। आम नमाज पढ़ते हैं बोझ समझकर, मुश्किल से उठ के आते हैं कि नमाज भी पढ़नी है, वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही। एक क्लोज, एक बड़े करीबी रिश्ते और रिलेशनशिप की बात हो रही है, एक ऐसे करीबी दोस्त के तौर पे जिससे इंसान अपने राज शेयर करता है, जिससे इंसान अपने दुख सुख शेयर करता है। आपने कभी तजर्बा किया तन्हाई में बैठकर अपनी जुबान में? कुछ लोग होते हैं बहुत देर तक बैठे रहते हैं मुसल्ले पर, कुछ खवातीन बहुत देर तक बैठी रहती है मुसल्ले पर, पता नहीं कितनी दुआएं पढ़ देती है, कितनी तस्बीहात पढ़ देती है, लेकिन उसकी लज्जत का एहसास नहीं करती। अगर करना है एक काम कीजिए, और वो ये कि अपनी जुबान में, जैसे आप अपने किसी करीबी तरीन दोस्त के पास बैठकर अगर आप परेशान हैं, उसके साथ कैसे बातें, उससे कैसे हाल पूछते हैं, कैसे शेयर करते हैं, इसी तरह बिल्कुल अपनी तन्हाई में, बिल्कुल आहिस्ता आवाज में, कोई दूसरा सुनने वाला ना हो, अल्लाह से बात करें। अल्लाह से बात करने की खुद को आदत डाल, आप देखें कि उसके बाद कितनी ज्यादा बेहतरी और इत्मीनान आपको फील होगा। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि सिंपली जैसे आमतौर पर रूटीन में नमाज पढ़ दी, कोई दुआ पढ़ ली अरबी जुबान में, वो मुराद नहीं है। मुनाजात यानी राज और न्याज, नजवा कहते हैं सरगोशी को, और सरगोशी इंसान किसे करता है, जिसे बड़ी अच्छी तरह जानता होता है। अजनबी से सरगोशी नहीं होती, उसी से सरगोशी हो सकती है जिसके साथ इंसान करीबी ताल्लुक रखता है। बस एक मुनाजात के लिए, दूसरा मेहनत करने के लिए, रिस्क के लिए, तीसरा तवज्जो कीजिए। ये अफराद जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, अगर इंसान की जिंदगी में ना हो, इंसान की जिंदगी हतमन खराबी की तरफ जाती है। फरमाया एक वक्त तुम्हारे शब और रोज में ऐसा हो कि जिसमें तुम अपने उन भाइयों और काबिल एतमाद अफराद के साथ बैठो कि जो तुम्हें तुम्हारे ऐब बताते, तुम्हें कहते हैं ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम्हें बताते हैं, चौक में नहीं बताते जाकर, दूसरी महफिल में बैठ के तुम्हें डिस्कस नहीं करते, तुम्हें बताते हैं। दूसरों से मोमिन का काम क्या है कि दूसरे मोमिन के ऐब दूसरों से छुपाए लेकिन खुद उसको बताए। और आम रूटीन में क्या होता है, जिसका ऐब है उसी को नहीं बताते, बाकी जहां उसका नाम आए वाजिब समझते हैं बताना। लगे तो अपनी जिंदगी में ऐसे साथी तलाश कीजिए और उनके साथ बैठिए, और वो क्या करें, आपके अंदर जो कमी है, जो आपको नुकसान दे रही है, जो आपको बेहतरी की, आपके बेहतरी की तरफ जाने में रुकावट है, वो आपको बताएं। ना कि आपके साथ बैठ के टाइम पास करें, हंसे, जोक्स करें, गप्पे सुनाएं, लोगों को डिस्कस करें, उठ के चले जाएं, हर एक अपने अपने गुनाहों का उस महफिल से बोझ उठा के चला जाए। बल्कि एक आपकी कंपनी में ऐसे अफराद का ग्रो होना चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने हो जाए, जिनके आपने जिम्मे लगा दिया कि मेरे में जो कमी देखो मुझे जरूर बताना। तो एक हिस्सा वक्त का उन भाइयों और अफराद मोरद एतमाद अफराद के साथ बैठने में जो तुम्हारी कमियां और तुम्हारे ऐब तुम्हें बताते हो। छठे इमाम का एक फरमान है जिसमें फरमाते हैं कि मेरा बेहतरीन भाई वो है जो मेरे ऐब मुझे गिफ्ट करता है, हदिया करता है। और हमें इसी निगाह से देखना चाहिए। अगर कोई हमारा मुखलिस आके हमें बता रहा है तन्हाई में कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो असल में हमें बेहतरीन गिफ्ट कर रहा है, हमें मुजयन कर रहा है, हमें खूबसूरत बना रहा है। एक और हदीस के लफ्ज ये है कि वो शख्स के जो अपने भाई को लोगों के दरमियान उसका ऐब बताता है वो उसे रुसवा कर रहा है, और वो शख्स जो अपने मोमिन भाई को तन्हाई में उसका ऐब बताता है वो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, उसको रुसवा नहीं करता, उसके हुस्न में उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा। चौथा फरमाया, हलाल लज्जतों से इस्तफादे के लिए, और फिर फरमाया कि ये वो वक्त है हलाल लज्जतों का, हलाल तफरी का वक्त, ये वो वक्त है जिसके जरिए तुम अपने बाकी कामों के लिए खुद को तैयार करो। यानी अगर तफरी और हलाल लज्जत का वक्त ना हो इंसान की जिंदगी में 24 घंटे में, तो बाकी काम करने की सलाहियत भी उसकी मुतासिर होगी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। तो बस दीन इस्लाम न सिर्फ ये कि इंसान की इंजॉयमेंट वाले काम, अलबत्ता हलाल होने की शर्त के साथ, और इंसान की तफरी न सिर्फ ये कि मना नहीं करता बल्कि उसकी ताकीद करता है, और ये फरमाता है कि इसके जरिए तुम बाकी जिम्मेदारियों के लिए खुद को आमादा करोगे, फ्रेश हो जाओगे, ताजा दम हो जाओगे, और अगर ये तफरी और लज्जात नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी में तो बाकी भी जिंदगी में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगली चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जो एक्चुअली जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, ये जो मैंने बयान किया ये उसी का हिस्सा है, लेकिन ये औकात की तकसीम है। ये चीजें हमारी जिंदगी में हतमन होनी चाहिए, हमारे 24 घंटों में इन कामों के लिए एक वक्त मुअय्यन होना चाहिए। एक और काम के जो जिस इंसान की भी जिंदगी में नहीं है वो एक कामयाब जिंदगी नहीं कहलाएगी, और वो है अपनी जिंदगी के बारे में इंसान प्लान बनाए, मंसूबा बनाए। आज आप जहां पर बैठे हैं, आया इसके बारे में कोई प्लान किया था आपने या नहीं? इधर उधर ठोकरे खाते चलते फिरते बिलाखिर जहां दरिया का पानी आपको लेकर आ गया वहीं पर आप आ गए। जो लोग मैंने अर्ज किया खुद को कीमती समझते हैं वो अपने आप को मुआशरे के बहाव के सुपुर्द नहीं करते, वो देखते हैं कि ये जिधर बह रहे हैं सब आया वो सही डायरेक्शन। मुझे कहां पहुंचना है, मेरी जिंदगी का अल्टीमेट हदफ और मकसद क्या है? मैं आज से 10 सालों बाद, आज से मसलन 20 सालों बाद अगर मेरी जिंदगी होती, मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं, अपने अंदर कौन सी सिफात देखना चाहता हूं, कैसे दोस्त अपने इर्द गिर्द देखना चाहता हूं, वो एक प्लान करता है, एक बड़ा हदफ, और उस हदफ तक पहुंचने के लिए छोटे आहदाफ, 1 साल का, 6 महीने का, 1 साल का। और जितना जितना इंसान इसके बारे में संजीदा होता है उतना अपने प्लान्स को छोटे हिस्सों में तकसीम करता जाता है। साल 6 महीने, 1 महीना। इस 1 महीने में जो हदफ हासिल करना है कब हासिल कर पाऊंगा, जब चारों हफ्तों के लिए प्लान करूं। चारों हफ्ते वाले कामों को किस तरह सही कर पाऊंगा, जब हर रोज के लिए प्लान करूं। हर रोज वाले काम कैसे ठीक कर पाऊंगा कि पूरे दिन के लिए मेरे पास एक शेड्यूल मौजूद है। टाइम के एक छोटे से हिस्से से लेकर अपनी पूरी उम्र तक प्लान करना और उस प्लान को रिव्यू करते रहना, यानी एक बेहतरीन कामयाब इंसान कौन है कि जिसकी जिंदगी में वो टाइम बहुत कम आता हो कि जब सोचे अब मैं क्या करूं, इस टाइम में मैं क्या करूं, बैठ के बोर हो रहा है। बोर बिलुम कौन लोग होते हैं, जिनके पास कोई प्लान नहीं होता, जिनके पास कोई काम नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतने काम होते हैं कि कुछ कामों के लिए उन्हें वक्त ढूंढना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर फोन कर रहे होते हैं कि यार क्या करें यार, मैं तो घर बैठ के बोर हो रहा हूं, मुझे तो कोई टाइम गुजारने के लिए कोई चीज ही नहीं मिल रही। फजूलियात में खुद को जाया कर, खुद को जाया कर रहे होते। वक्त इंसान जाया नहीं करता, असल में खुद को जाया कर रहा होता, क्योंकि हम क्या है, हम वही वक्त है जो हमें मिला इस दुनिया में। तो एक शेड्यूल, एक प्लान जिंदगी के लिए हो। और उसके बाद बाज लोग हमने ऐसे देखे कि उन्हें शेड्यूल बनाने का बहुत शौक है लेकिन उस पर अमल करने का कोई शौक, पूरा प्लान बता देंगे ये है ये है ये है, लेकिन उस प्लान का अक्स उनकी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा। प्लान बनाए और वो प्लान बनाए जिस पर फिर आप अमल करने का खुद को पाबंद करें, खुद पर आपको कंट्रोल हो। उस प्लान के अंदर बहुत से काम है जो आपके करने का दिल करता है और बहुत सारे काम है जो आपका करने का दिल नहीं करता। ये दिल करता और दिल कर नहीं करता को ना देखें इब्तदा में, बल्कि देखें कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से काम इंपॉर्टेंट नहीं, और उनकी इंपॉर्टेंस के एतबार से उनको शामिल करें अपने प्लान में। शुरू शुरू में सख्त होगा लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट काम है आपको वही अच्छे लगते हैं और जो अनइंपॉर्टेंट काम है आपको वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आप इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आपको अनइंपॉर्टेंट काम बहुत खींचेंगे और इंपॉर्टेंट काम आपके रहते जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि एक बच्चा है, उसको पढ़ने में मसलन मजा नहीं आता, खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसे कोई मोटिवेट करता है, कोई उसको तरगीब दिलाता है और वो पढ़ना शुरू करता है। शुरू शुरू में बोझ महसूस करता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पढ़ाई की लज्जत का एहसास करना शुरू कर देता है। और फिर ऐसा उस पढ़ने के की लज्जत उससे आशना हो जाता है कि उसको दूसरे कामों में, जो पहले उसको बहुत जी चाहता था लेकिन अब उसको पढ़ाई के मुकाबले में वो काम करने का जी, वो उसी को एंजॉय करता है। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। ये लज्जत जो अहम कामों में महसूस होती है वो अल्लाह ने कुछ मेहनत और खुद पर कंट्रोल के बाद रखी है, वो तब मिलती है इंसान को नेमत, वो गिफ्ट इंसान को तब मिलता है जब पहले खुद को कंट्रोल करना सीखे। तो वो काम जो उसको पहले लजीज नहीं लगते थे उसको लजीज लगना शुरू, अहम भी है और वो एंजॉय भी कर रहा है। जबकि दूसरा कौन है कि जिसको हर अहम काम बोझ लगता है और हर फजूल काम उसे लगता है कि जिंदगी तो इसी का नाम। उसके बाद एक और चीज के जो इंसान को वक्त जाया होने का सबब बनती है वो क्या है कि इंसान काम को उस किसी भी वजह से उसके सही टाइम पर अंजाम नहीं देता। अगर आप दीन इस्लाम की तालीमात की तरफ देखें मसलन ये जो नमाज पंचगाना है इसके बारे में ताकीद क्या की गई है? अगरचे हर नमाज के लिए कुछ टाइम स्पेन दिया गया है कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक तुम ये नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला को सबको देखना था, ढीलों को भी और होशियारों को भी। लेकिन ताकीद किस पर की गई? कहा गया बेहतरीन नमाज वो है जो अव्वल वक्त में पढ़ी जाए। अव्वल वक्त में पढ़ी गई नमाज हर एतबार से बेहतरीन नमाज है, अजर के एतबार से, आपकी जिंदगी आपकी शख्सियत पर असर के एतबार से, आपको एक मुनज्जम इंसान बनाने में कितना किरदार है। वो लोग जिनको आदत है कि मैंने अव्वल वक्त नमाज पढ़नी है, वो क्या करते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज को उस नमाज के टाइम को जहन में रखते हुए प्लान करते। ये गोया सिखाया जा रहा है कि जो काम तुम्हारे लिए अहम है बाकी कामों को उस काम के वक्त को जहन में रखते हुए प्लान करो। लेकिन कुछ लोगों का कोई टाइम कोई काम टाइम पर नहीं हो पाता, कहीं जाना है पहले से ही जहनों में बैठा हूं, 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आराम से जाएंगे। कई दफा बस दफा किसी प्रोग्राम पर बुलाया जाता है, कहते हैं सर आपको पूरे 4 बजे हम बिठा देंगे मेंबर पर। 4 बजे बंदा पहुंचता है, देखता है वहां बंदा ही कौन, अकेले ही मेंबर पर बैठ रहे हैं, तो बैठ गया। लोगों के जहनों में बैठ गया है कि जो टाइम शादी के कार्ड पे लिखा हो, जो टाइम फलान फंक्शन की जनाब है, उस टाइम पे नहीं जाना। उस टाइम पे जाना एक बेहुदा काम, कोई भी नहीं होगा। आराम से गैस करो, 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, इंसान अपनी जिंदगी को इस तरह से जाया करते, क्यों अपनी कदर नहीं करते। कामों को मौके पर अंजाम देना, जो किसी काम का टाइम है, मैंने आपको अर्ज किया अल्लाह ने बहुत सारी इबादात के लिए टाइम फिक्स किया, मैंने कहा 5 नमाजों का टाइम है। माह रमजान एक टाइम है, हज का एक टाइम है। बाज़ औक़ात दुआओं की कबूलियत के लिए रिवायात में खास टाइम बताए गए। इन सब चीजों को अगर आप गौर से देखें तो ये टाइम की इंपॉर्टेंस की तरफ, किस टाइम पर क्या काम करना है उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ हमारी रहनुमाई की जा रही है। एक सलावत पढ़े मदवार और एक और चीज कि जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं, रिवायात में इसकी बहुत ताकीद की गई, बहुत से लोग हैं कि जिनके अंदर जब ये खसूसियत नहीं,
बहुत ही अहम और इंसान की जिंदगी का, इंसान के वक्त का बहुत बड़ा चोर जिंदगी में किसी मकसद का ना होना। उसे पता ही नहीं मैंने क्या करना, कभी कहीं टाइम जाया कर रहा, कभी कहीं टाइम जाया कर रहा। नंबर 3, गलत आदतें, फजूल आदतें। आदत पड़ गई है उसको किए बगैर गुजारे ही नहीं। क्यों करते हो? वैसे टाइम किल करता हूं, ये लफ्ज आपने सुना, टाइम किल, असल में अपने आप को किल कर, टाइम को किल। टाइम बहुत कीमती, खुद भी बहुत कीमती है, लेकिन इसे पता नहीं है कि मैं कीमती हूं, अपने आप को कत्ल कर रहा हूं और कहता कि मैं टाइम को किल कर रहा हूं। ये गलत आदतें कौन कौन सी है? ज्यादा सोने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, टॉयलेट में बहुत देर रहने की आदत। कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं, उठ गए होते हैं लेकिन फिर भी आधा घंटा लगाते हैं बिस्तर से निकलते निकलते। क्या कर रहे हैं? गलत आते हैं इंसान के टाइम को। इसी तरह मुनज्जम ना होना, दिन के कामों का कोई प्लान, कोई शेड्यूल, कोई लिस्ट नहीं है, कोई पता नहीं है कौन सा काम कब करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, इस किस्म का। बाज लोगों को बहुत ज्यादा बातें करने की आदत होती है, बैठ गए बात करने पर तो चुप नहीं करेंगे और टाइम जाया करेंगे, अपना भी और दूसरे का भी, तो जो साथ बैठे उनका ज्यादा बातें कर। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इज़ा कम्मल अक्ल नकसल कलाम, जब इंसान की अकल मुकम्मल होने लगती है उसकी बातें थोड़ी हो जाती, मुफीद बोलता है गैर मुफीद नहीं बोलता, उससे अब उसकी अकल उससे तकाजा करती है क्यों फजूल बोल रहे, जो चीज जरूरी नहीं है। और ये ज्यादा बोलने वाले ऐसी बातें कर जाते हैं जिस बाद में पछताते हैं, काश मैंने ये बात ना की। लेकिन जब बोलने का टाइम होता है अपने आप को रोक नहीं सकते, जब भी ऐसा मौका मिलता है खुद को रोक नहीं पाते और बातें शुरू कर देते। एक और वक्त का चोर क्या है? फजूल बातों, फजूल सवाल पूछना। एक सवाल इंसान पूछता है अपनी जहालत दूर करने के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए। एक तो वह सवाल पूछता है बंदा अगले को चेक करने के लिए, अगले को टीज करने के लिए, या उसे पता होता है सवाल का जवाब क्या देगा और लोगों को मैं इसके खिलाफ कर दूंगा। मुख्तलिफ अंगीजों से दिल में मुख्तलिफ उसकी अलग ही नीयत होती है, सवाल पूछता फजूल सवाल पूछता। मुर्गी पहले पैदा हुई थी या अंडा पहले पैदा हुआ था? इस सवाल का जवाब ना किसी ने दिया ना कोई दे सकेगा। मसलन जो कहता है मुर्गी पहले पैदा हुई थी वो अपने दलाई देना शुरू कर देता है, जो कहता है अंडा पहले पैदा हुआ वो अपने दलाई देना शुरू कर देता है, जबकि ना कब्र में किसी ने आपसे पूछना है, ना कियामत में किसी मरले पर किसी ने आपसे पूछना है कि मुर्गी पहले पैदा हुई थी या अंडा पहले पैदा हुआ। फजूल सवाल। एक साहब ने मुझे फोन किया, कहते हैं दिलाल बारी कश्तर की सास का नाम बताइए। तो मैंने उनसे कहा भाई मैंने उनका रिश्ता नहीं करवाया था, मुझे उनकी सास का नाम। बहुत से लोग मजहबी सवाल करते हैं जिनका उनको कोई फायदा नहीं, अजीब गरीब किस्म के सवाल करते हैं। मजहबी हो या गैर मजहबी हो, वो सवाल जिसका ताल्लुक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से है, जिससे आप उनको बेहतर बना सकते हैं, वो सवाल पूछे। ऐसे बैठे बैठे कड़क से कोई मसला जहन में आया, फोन करके उस पर बहस शुरू कर दो, सवाल शुरू कर, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, तुम कौन हो, तुम्हें कितना पता है, मेरा दिल नहीं मानता, तुम्हारा दिल नहीं मानता, तुमने अलग किताब देखी है, तुमने हदीस देखी है, वो देखी नहीं, कहते मेरा दिल नहीं मानता। जाया करते अपना वक्त भी, जाया करते दूसरों का वक्त भी जाया करते। एक और अपने काम दूसरों के सपोर्ट कर रहे, खुद लेटा हुआ बिस्तर पर, छोटे भाई से कह फलाना काम कर, छोटी बहन से कह फलाना काम कर, अपनी ये चीज मुझे ला के दीजिए, अब ये काम कर दीजिए, मिसाल के तौर पर खुद लेकर टाइम जाया कर, खुद बेकारी में जाया कर रहे और दूसरे जो भी और काम करना था इसके काम करते करते कर टाइम जाया कर। अलबत्ता याद रखिए बाज औकात इंसान देखते हैं कि दो तीन काम है और मैं इस टाइम में एक कर सकता हूं, तो फिर वो जो दूसरे इंपॉर्टेंट काम है मसलन एक मुलाजिम रख लेता है ताकि वो ये काम करे और मैं इंपॉर्टेंट काम कर सकूं। ये अलग चीज है और ये जरूरी है। और एक दफा ये नहीं है, सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से दूसरों को कामों पर लगाए रखता है, ये इंसान की उम्र का ज़िया है, ज़ाया करता है। एक और चीज जो बहुत वक्त को खा जाती है वो टेलीविजन है, और उस टेलीविजन के साथ आप जोड़ लें मोबाइल को और टैबलेट्स को कि ये बीमारी पता नहीं जो अगली नस्ल आएगी वो हम पर कितना नोवा करेगी और कितना कहेंगे यार ये तो देखकर पागल ही हो गए। जिस तरह कहते हैं ना कोई बहुत बड़ा खा रहा है उसे कहते हैं पहली दफा देखा है, तो हमारी नस्ल ने इंटरनेट और ये पहली दफा देखा है, तो इन पहली दफा देखने की वजह से अपने अपने कंट्रोल से बाहर चले। और कितना हिस्सा अपने 24 घंटों में से कंबल ऊपर लेकर पड़ा हुआ है, आपका समझ ले सो गया लगा हुआ था, अंदर कत्ल वारदात हो रही है, गेम खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, फलाह कर रहा है, और सुबह के साथ के तौर पर जब नमाज का टाइम है जोश पड़ा। एक खातून अपने बच्चों की वीडियो बना कर कह रही थी कि इनको कोई मत जगाए, ये रात को सरहदों पर लड़ते रहे, इन्होंने कितने दुश्मन फौजी कत्ल किए और अब ये इस जंग लड़ने के बाद सोए पड़े हैं, अपनी उम्र जाया करके सोए पड़े, अपने इंपॉर्टेंट काम खराब करके सोए पड़े। मैं यहीं पर इत्तफाक कर रहा हूँ, खुदा बंदे आलम इंशाल्लाह हमें हम सबको तौफीक अता फरमाए, अपनी कदर को जाने, हमारे पास इस दुनिया में वक्त जो है वो महदूद वक्त है, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को कीमती समझें। जब हम अपने आप को कीमती समझेंगे, अपने वक्त को कीमती समझेंगे, इस वक्त के बारे में क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा, बड़े बड़े सवाल क़यामत के दिन होंगे, पूछा जाएगा तुमने उम्र अपनी उम्र किन कामों में गुजारी, किस काम में गुजारी, यानी तुमने अपना वक्त जो हमने तुम्हें दिया था तुम्हारा नहीं था हमने तुम्हें दिया था तुमने किन कामों में गुजारा है। खुदा रब्बुल आलम अपनी कदर करने की और अपनी जिंदगी को अपने औकात को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की सर्व करने की परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। दुआ कमेटी के तमाम मेंबर्स आगा है साहब के बहुत ममनून और मशगूल हैं कि वो हर दफ़ा की तरह हमारी कॉल पर फर्स्ट प्रायोरिटी में टाइम दे देते हैं, और उनकी तकरीर आप लोगों के सामने है। खुदा इंशाल्लाह तौफीक दे कि जिन बातों के ऊपर उन्होंने डिस्कस किए जो पॉइंट्स हम तक हाईलाइट करके पहुँचाए हमने तौफीक दे के हम तरह कर सकें। जिस तरह वक्त डिवीजन या वक्त की डिवीजन की बात आगे साहब ने की है, आई थिंक ये वाला पर्सपेक्टिव तो आज हम तक पहले नहीं पहुँचा हुआ, और बात वही होती है कि मकतब जिस हम मकतब से बिलोंग करते हैं हर मूवी दिल बन जाए, तो बस कई दफ़ा दरिया के सामने होता है और आप चीज़ों को खुद नज़रअंदाज किए बैठे होते हैं और आप शिक और शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे पास वसाइल मेंटर्स नहीं है, क्योंकि हम उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं जो यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी से, तो उनका एक गेला या नारा भी एक यही रहता है मिशन के हमारे पास उस तरह के मेंटरशिप नहीं है, या उस तरह के हमारे पास कोई जिस तरह वेस्ट के पास है, आप आदर जब आप नाम देते हैं टेन फैसला अगर आप जानते हैं या ये और मास के इन लोग को माइनलाइज कर रहे हैं कि जी इम्पैक्ट हो रहा हूँ लोग इससे जो है ये लोग एक इस तरह आठ बजे उठते हैं नाश्ता क्या करते हैं आपके बच्चों को यहाँ पर क्या पता होगा उनकी उनकी ब्रेकफास्ट की रूटीन क्या है ये और मास या टेन फैस या सी जॉब क्या कर रहा है सुबह नमाज। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर यही है कि हम अपने मकतब से बहुत दूर हैं, हम अपने फिक्र से बहुत दूर हैं, ये भी आ रहा है कुछ बातें इतनी आई कि अगर मैं उस चीज़ का परस्पेक्टिव हूँ तो वेस्ट इस चीज़ को अब आके 50 साल या 40 साल वाले लोग कर रहे हैं कि डिवीजन और टाइम के डिवीजन
करनी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा इन टच रहना है अपने दीन के साथ, جو آغا صاحب نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ڈویژن آف ڈے کے اوپر، اگر ہم اسی کو اپلیکیشن کر لیں تو اس کے اندر تو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ پالیسی ہم اپنائیں گے تو شاید ہم